फिर आप देखिए दूसरा हिस्सा सूरत का, आयत 44 से 57, क्या था इसमें? अहले किताब को दावते इस्लाम। इसके अंदर फिर मजीद चार चीजें हैं, अगर 1, 2, 3 कर लीजिए। नंबर एक, अहले किताब की गुमराहियां बयान की गई कि वो गुमराही खरीदते हैं, कलाम को अपने मौका व महल से फेर देते हैं। अहले किताब को दावते इस्लाम दी गई, या अय्युहल्लज़ीना उतुल किताब आमिनु बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिकन लिमा मअकुम। अहले किताब को साफ साफ बता दिया गया कि शिर्क नाकाबले मुआफ़ी जुर्म है, बाकी गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं। आयत 48। अहले किताब की ओहाम परस्ती, ओहाम परस्ती क्या होती है? वहम परस्ती, जिप्त व ताहूत पर तनकीद की गई कि वो जिप्त और ताहूत पर ईमान रखते हैं। इनके तासुब पर गिरफ्त की गई कि मुसलमानों के मुकाबले में मुशरिकीन को ज्यादा हिदायत याफ्ता समझते हैं। इन पर अल्लाह की लानत है, ये बखील हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने वाले अहले किताब के लिए दोजख है, जिनमें इनकी खालें बदली जाएंगी और मुसलसल जला जला कर अजियत दी जाएगी। अहले किताब में से इस्लाम कबूल करने वालों के लिए जन्नत और इसकी नेमतें होंगी। आयत 46 से 56 में। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे पाठ के अंदर जो चीज़ आपको मुझे कही गई कि उनकी जहालतों और उनकी गुमराहियों को दूर करने के लिए तुम दावत देना ना छोड़ो। मैं एक छोटा सा क्लिप देख रही थी कि 3 मिनट में एक जीव मुसलमान हो गया, तो मुझे ऐसी तजस्सुस हुआ कि कौन होगा जिसने उसको तबलीग की। और आपको पता है कि अहले किताब में जो ज्यूज़ हैं ये अपने दीन में बड़े पक्के हैं, तो मैंने उसको क्लिक किया तो पता है कौन था? यूसुफ एस्टिस, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट है, और उनके सामने एक एक ज्यू बैठा हुआ। तो वो उसको सिर्फ मेरे 2.5 से 3 मिनट का क्लिप था, तो एंड पे उसने शहादत दे दी। वो कहते हैं ना, दो ब्रेन जब मिलते हैं, अक्लमंद को अक्लमंद मिलता है, जब वो भी अक्लमंद थे वो भी थे, अब मेरे आप की बात से उसने मुतासिर ही नहीं होना था। तो हमेशा लोगों के इंटेलेक्ट को चछू है, किस बात पे कौन आपकी बात मान लेगा। और बिलीव में अगर ये गुण आ गया ना, तो आप एक अच्छे टीचर भी हैं, और आप एक अच्छी माँ भी, और आप एक अच्छे सेलर भी हैं। आप लोगों का माइंड पढ़ लें कि इस वक्त इसको क्या चाहिए। आप अच्छी बीवी बन जाती है, अपने शौहर के माइंड को पढ़ लें। आप अपनी सास का मिजाज पढ़ लें कि इस वक्त ये मुझसे क्या चाहती हैं। और ये मांगने वाली चीज़ है। ये हिकमत आ जाए उम्मत में, तो आज हम पूरी दुनिया में खूबसूरत तरीके से थोड़ी कोशिशों में ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। हम कोशिशें ज़्यादा कर रहे हैं, फ़ायदे कम हो रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे लिए हिकमतों के दरवाजे खोल दे। फिर इसके बाद देखिए तीसरा हिस्सा, टोटल कितने हैं सूरत निसा के, बोल दीजिए? 9 हैं। अभी कौन सा है? तीसरा। तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, 58 से 59। तीसरे पैराग्राफ में इस्लामी रियासत के अंदर रियाया और हुकूमत के हकूक व फराइज पर रोशनी डाली गई। तीसरा पैराग्राफ सिर्फ 2 आयतों पे है। देखिए अब सिर्फ 2 आयतें और मजमून कितना बड़ा है। इस्लामी रियासत के अंदर रियाया और हकूमत के हकूक व फराइज। अब आप मुझे जरा इसको हाईलाइट करके बताएं। हमारे पाकिस्तान का ये मसला है, रियाया और हकूमत के आपस के हकूक फराइज, क्या लिमिटेशन है, इसकी जरूरत है? और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत ये होती है जब बच्चों की ज़ुबान से मैं ऐसे जोक सुनती हूँ, या अक्सर मैसेजेस में फजूल से मैसेज भी आ जाते हैं, तो सियासतदानों के नामों पे जोक्स बने होते हैं। तो मैं ऐसी कोई एक फजूल सी चीज़ आंखों से गुजरी, तो मैं अपने दिल में ना एक पेन महसूस करती हूँ कि अब हमारे मुआशरे में पेरेंट्स बच्चों के सामने हुक्मरानों की बुराई करते हुए माइंड नहीं करते, और उनके बच्चे कुछ कर भी दें तो कहते हैं ये तो सबको पता है, ये हैं ही सारे मुनाफिक, ये हैं ही जहन्नमी, ये हैं ही काफिर। ये बहुत डिक्लाइन की एक अलामत है। जिस मुल्क की नस्ल अपने मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ है, वो उस मुल्क से कभी सिंसियर नहीं होंगे। वो कहेंगे सारा इन्होंने खा जाना है, कोई नहीं देना टैक्स, ये सारा इन्होंने लूट जाना है, हमने नहीं इनकी बातें मानी, ये कौन सी मानते हैं, हमने रूल्स नहीं मानने। इसलिए कभी अपने बच्चों के सामने सियासी लतीफे या सियासी बातें ना करें। मर्दों ने करना है, अकेले में करें। आपके घर में इजाज़त नहीं होनी चाहिए सियासत पे बात करने की, और एक सियासतदान को दूसरे से रिलेट करें, लेकिन क्या करें, हमने तो इतना बड़ा डब्बा रखा हुआ है खबरों के नाम पे। और माशाल्लाह अल्लाह हिदायत दे, सुनते भी घर के बुजुर्ग ही हैं ज़्यादा जी, खबरें सुनते हैं। तो खबरें सुनने के लिए आपने ये रखा है, अगर घर में बुजुर्गों का ये शुगल है ना, तो माजरत के साथ आप उनको टीवी उनके कमरे में ले दें। आपके घर के लाउंज में अगर ऐसी चीज़ें हर वक्त चलती, कान पक जाते हैं सुन सुन के, फिर बुरी नहीं लगती बातें, क्योंकि मैं नहीं सुनती ना। तो कभी ऐसी वंस अ वाइल को ऐसी स्लाइड नजर आ जाए या कोई बात, तो मेरा दिल जल जाता है। तो जो लोग दिन रात ये बातें करते हैं उनको बुरी भी नहीं लगती होंगी। तो तो इस हिस्से में दो आयतें हैं कुरान की, तीसरे पैराग्राफ में ये दो आयतें हैं। आयत 58 में अदलो इंसाफ के साथ ओहदे और मनासिब अहल यानी एलिजिबल लोगों को तफवीज करने का हुक्म। देखिए इस पे बात करें ना, अल्लाह सुब्हान तआला क्या सिखाते हैं कि जब लोगों को तुम बड़ा बनाते हो, जब तुम चूज करते हो, और अब तो जो निज़ाम है उसमें तो कहते हैं गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल, तो अच्छे लोग चूज कर लो, ये तुम्हारी अपनी च्वाइस है, बुरा क्यों कहते हो? बात समझ रहे? रियाया का ये कसूर है कि वो उन लोगों को नहीं चुनते जो अदल इंसाफ के साथ अपने कामों को जिम्मेदारी से निभा सके। फिर आयत 59 में अल्लाह रसूल की इताअत के मातहत हुक्मरानों यानी उलुल अमर की इताअत का हुक्म दिया गया। अब चूज कर लिए, अब भुगतो, अब तुम्हें मानना पड़ेगा। अल्लाह रसूल की इताअत मुतलिक यानी एब्सल्यूट और गैर मशरूत यानी अनकंडीशनल है, यानी जहां हुक्मरानों की कोई बात अल्लाह और उसके रसूल की किसी बात से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, टकराव पैदा होगा, तो किसकी माननी है? अल्लाह सुब्हान तआला की, क्योंकि ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जबकि हुक्मरानों और दीगर बुजुर्गों इमामों और मुफ्तियों उलुल अम्र की इताअत बाउंड एंड कंडीशनल है, मुकय्यद और मशरूत है। कम से कम अराब लगा लिया करें, वरना आप इसको मुझे पता है मुकीद पढ़ेंगे, और मैं फिर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये बुक की जो मुश्किल टर्म्स हैं ये आप ग्रुपिंग में दोहराया करें। मुकय्यद है, मशरूत है, थोड़े से अराब लगाए होंगे तो इंशाल्लाह गलती से बचेंगे। हुक्मरानों और दीगर उलुल अम्र से इख्तलाफ और नज़ा की सूरत में किताब और सुन्नत की तरफ रजू करने की हिदायत की गई है। फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल, आयत 59 में ये बात आ गई। तो खुलासा क्या निकला इन दो आयतों का, कि हुक्मरानों को चूज़ करते वक्त ये क्राइटीरियन रखो कि ये इंसाफ और अदल और अल्लाह के खौफ के साथ काम करेंगे। उसके बाद दूसरी बात है कि जब चूज कर लिए तो मानो। आपने कहा तुम पे स्याह हबशी भी मुकर्रर कर दिया जाए तुम उसकी बात मानो, छोटा हो तुमसे उम्र में है, ओहदे में छोटा है, फिर भी मानो। हम क्या करते हैं, चूज गलत करते हैं तो बाद में मानते भी नहीं। बात समझ गए? तो क्या इस हिस्से को आम करने की जरूरत है? सूरह निसा की ये दो आयतें पढ़ के सुनानी चाहिए, और इन आयतों पर कई दफा दर्ज हुई मैं, क्योंकि इसमें उलुल अमर को मैंने बड़े क्लियर कट दो हिस्सों में बांटा हुआ था। पहला हिस्सा मजहबी रहनुमाओं की सूरत में, दूसरा सियासी रहनुमाओं में। आज मजहबी रहनुमाओं में भी हम खपड़े में कि जी जो बुजुर्ग कह देंगे ठीक है, और दुनियावी मामलों में तो हम वैसे ही नहीं मानते। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें इल्म दोस्त बना दे। फिर चौथा पार्ट है, कुल कितने आधे के करीब पहुंच रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका जहन काम करता रहे। आयत 60 से 104 काफी तवील हिस्सा है। आप देखिए 44 आयतें हैं, किसके बारे में आप लोग पढ़े जरा सब मिलके जुमला, मुनाफिकीन और जिहाद का तذکرہ है। कभी आपने इस पे गौर किया? पीछे एक सेटअप की बात है, सिर्फ दो आयतों में पूरा मुल्क सीधा हो सकता है। निफाक की बात आती है सबसे तवील। आप देखिए सूरह बकरा में मुत्तकीन की अलामतें कितनी आयतें, पांच, काफिरों के लिए दो और मुनाफिकीन के लिए 12 आयतें। मुनाफ़कत ही सबसे बड़ा रोग है। मुझे तो लगता है अब एक साल का दौरा कुरान सिर्फ मुनाफ़कत की रोशनी में कराना है, मेरा नहीं ख्याल कोई सुनने आएगा, बिलीव मी। आज का उस दौर का और हर दौर का जो बड़ा मसला इस्लाम के पनपने के रास्ते में वो निफाक है। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। और निफाक जहाँ आएगा ना, वहाँ साथ ही जिहाद ज़रूर आएगा। ये लिख ले, आपकी मेरी ज़िंदगी की अमली जिद्दोजहद में जब हमें कुछ जान माल वक्त देना पड़ता है, उसी वक्त ही तो हमारी असल खुलती है। अल्लाह ताला हमारे निफाक ख़त्म कर दे, अगर हैं तो उसको ख़त्म कर दे या छुपा दे, लेकिन हमें दुनिया में कभी भी मुनाफ़िकाना ज़िंदगी से ना गुजारे। चौथा हिस्सा मुनाफिकीन और जिहाद के बारे में, इसके मज़ीद फिर कितने हिस्से हैं, पाँच, छः, सात और आठ, यानी सात आठ मुख्तलिफ इसके सब टाइटल्स हैं, यानी एक ही टॉपिक के अंडर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर ये जो ABC लिखी होती है ना आपके पास साइड में, उस पर आप 1, 2, 3 कर लिया करें, तो आपको एक स्ट्रेच में पता चलेगा कि इस चौथे हिस्से के मजीद आगे कितने हिस्से हैं। पहले हिस्से में क्या, मुनाफिकीन पर फर्द जुर्म आयद की गई। फर्द जुर्म आयद करना क्या होता है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। क्या आयद की गई, कि वो इख्तलाफी मसाइल के हल के लिए कुरान को छोड़कर ताखूत से फैसले कराते हैं। और शिर्क फिर तशरी, तशरी क्या है भाई, ये वो तशरी नहीं है जो हम करते हैं शरा से, तशरी क्या है, शरीयत साजी। ये कौन सा शिर्क होता है भाई, शिर्क फिल तशरी। अब मैं आपसे कहूँ क्या पाकिस्तान में शिर्क फिल तशरी है, तो क्या मतलब होगा? शरीयत साजी में शिर्क है, वही हर हुक्म जो अल्लाह के हुक्म से खिलाफ है वो शिर्क फिल तशरी है। और ये कितना बड़ा शिर्क है जिसको कोई मानता ही नहीं है। आपको तो कि पाकिस्तान में भी कई डायरेक्ट लॉज ऐसे हैं जो कुरान सुन्नत से टकराते हैं, शादी से मुतल्लिक कई लॉ है। खैर, शिर्क फित तशरी के मुर्तकिब होते हैं। आयत नंबर 60, कुरान और सुन्नत से गुरेज का रवैया अख्तियार करते हैं आयत 61, झूठी कस्में खाते हैं आयत 62। बस इन अलामतों को पहचानना है हमने। मुनाफिकीन पर वाजह किया गया कि हर रसूल को मुता बनाकर भेजा जाए। मुता कौन होता है? जिसकी इताअत की जाए, यानी रसूल की बात मानो। जश्ने आमद रसूल है, ये सिर्फ फूल पेश करने वाला नहीं है, रसूल की आमद का मकसद समझो। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इन पर वाजिब है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। आयत 64, मुनाफिकीन को साफ साफ बता दिया गया कि इनका ईमान उस वक़्त तक मोतबर नहीं होगा जब तक वो दिल की गहराइयों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को ना मान लें। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक। ये बहुत अहम आयत है, आप इसकी भी तफसीर सुने तो आपको कई मसाइल का हल और वजह समझ आ जाएगी। आयत 65 है ये। मुसलमानों को हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया। मुनाफिकीन के जिहाद से फरार के रवैये पर रोशनी डाली गई। मजलूमों की मदद के लिए जिहाद की तरगीब दी गई। आयत 71 से 75, आपका मेरा जिहाद क्या है? याद रखिए किसी जो अमली जिंदगी की और खास तौर पे अल्लाह के दीन को आम करने की कोशिश है ना, ये हमारा जिहाद भी है, ये हमारी सही भी है। दूसरे पारे में आप पढ़ चुके हैं कि हजरत हाजरा को अल्लाह ने भगवाया था ना, इन सफा वल मरवा तमिन शायरिल्ला। तो हर एक थोड़ी जाके सफा और मरवा में दौड़ता है। ये आपका मेरा दौड़ना अपनी जिंदगी में दौड़ भूक, ये जो आपकी भाग दौड़ है सरवाइव करने के लिए, बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए, अपने घर में इस्लाम को लाने के लिए, मर्दों को दीन पे लाने के लिए, अल्लाह के दीन को इल्म को आम करने के, ये सब सही है, अल्लाह इसकी कदर करेगा। और उसमें अल्लाह ने कहा अल्लाह का ना शाकिर नलीमा। बस दफा हम भाग दौड़ बड़ी करते हैं, रिजल्ट ही नहीं मिलते। अल्लाह कहते डोंट वरी, मैं तुम्हारी कदर करने वाला हूँ। तो हमेशा भाग दौड़ करते रहे। याद रखे, निफाक और भाग दौड़ साथ नहीं चलती। मुनाफिक कभी भाग दौड़ नहीं करता, वो बैठ के सिर्फ तनकीद करता है या उजर तराशता है, या काम करने वालों को ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, या कुछ ज्यादा ही हो गया। उठिए, शाबाश आइए, आप निकल के कीजिए इस काम को, फिर पता लग जाता है। फिर जिहाद की दो किस्में बताई गई। नंबर एक, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये तो समझ आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरा है जिहाद फी सबीलित तागूत। ये क्या होता है? शैतानी निज़ाम को प्रमोट करना। हर वो एक्टिविटी एक मुसलमान की जो अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन के खिलाफ है ना, वो जिहाद लिता होता है। अल्लाह हमें बचा के रखे। मोमिन अल्लाह की राह में लड़ते हैं, काफिर तागूत के रास्ते में जंग करते हैं। शैतान के औलिया से जिहाद फर्ज है। ये कौन सा जिहाद है जी? शैतान के दोस्तों से। और वो कौन है जो दुनिया में अल्लाह के दीन को बदनाम करते हैं, जो दीन को मुश्किल गर्दानते हैं, उनसे लड़ाई करना फर्ज है। फिर मुनाफिकीन गुफ्तार के गाजी होते हैं। गुफ्तार का गाजी कौन है? बातों से खुश करते हैं, बातें कर कर के सच्चे होते हैं। कुफ्फ अईदियकुम, अभी अपने हाथों को रोके रखो के हुक्म पर बुलंदो बांग दावे करते थे। ये कब हुआ था? तफसीर आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं तो पता होगा कि मक्का में 13 साल तक जुल्म था, बर्बरियत थी, परसिक्वेशन थी, और बड़े बड़े गयूर साहबा आके कहा करते थे अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए एक दफा, हम भी जरा इनको मजा चखाएं। ये अबू जहल खुद को क्या समझता है, लेकिन क्या हुक्म था? कुफ्फ अईदियकुम, क्या बताया? तैयारी के बगैर काम ना करो, अभी तुम्हारा वो वक्त नहीं। कच्चे फल तोड़ोगे तो खट्टे होंगे, इसलिए पहले ईमान पैदा किया गया, फिर अंदर तकलीफें डाल डाल के उनको जमा दिया गया। कन्न बुनियान मरसूस, सब पिलाई दीवार बन के फिर मदीना में जाके कह दिया उजीना लिल्लजीना युकातलूनकुम। पहली दफा सूरत हज में जिहाद की इजाजत दी गई थी, और वो भी सिर्फ उन लोगों से जो पहल करें तो तुम अपने आप को उनसे बचा लो। लेकिन फर्जियत जिहाद के बाद लिमा कतबता अलैनल किताल, तूने हम पर किताल क्यों फर्ज कर दिया कि सदाएं लगाने लग गए? सोचिए जरा, पर मैं آیت 77 ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے. منافقین ہمیشہ موت سے خائف رہتے ہیں. 78 بڑے بڑے برجوں میں بھی جا کے چھپ جائیں گے نا تو موت وہاں بھی آ جانی ہے. پھر منافقین کو سمجھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. آیت 80 منافقین کو اہم معلومات امیر اور اہل علم تک پہنچانے کا حکم دیا گیا جو استنباط کر کے صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. استنباط کیا ہوتا ہے؟ نبتا سے. نبت کیا ہوتا ہے؟ قوم بھی تھی ایک نبتی، کنویں میں سے پانی نکالنا. تو استنباط ہے گہرائی میں جا کر مسئلے اخص کرنا. منافقین کے طریقہ اسلام پر تنقید کی گئی اور فحیو بیحسن منہا او ردوہا کا حکم دیا گیا. آیت 86 میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ یکسو ہو جائیں اور منافقین کے بارے میں دو آرا نہ رکھیں. آیت 88 منافق کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دو رخا ہوتا ہے، فوکسڈ نہیں ہوتا، دو چیزوں کے بیچ میں بھاگ رہا ہوتا ہے. دار الکفر کے مسلمانوں کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ ان کو دار السلام کی طرف ہجرت تک دوستی اور سرپرستی حاصل نہیں ہو سکتی. آیت 89 یعنی جب تک یہ ہجرت نہیں کر لیتے ان کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے. منافقین کی قسمیں بیان کی گئیں اور ان دو روحے منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جو دست درازی کرے. قتل خطا اور قتل عمد کے احکام کی وضاحت کی گئی. قتل خطا کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا اور وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے. دشمن قوم کا آدمی غلطی سے ہلاک ہو جائے تو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا. کسی قوم سے میثاق و عہد ہو تو ایسی صورت میں غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی ادا کرنی ہوگی. غلام نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے. جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صاف کہہ دیا گیا کہ قاعدین اور مجاہدین برابر نہیں ہو سکتے. مجاہدین تو آپ سب جانتے ہیں نا، نام بہت معروف ہے. قاعدین کون ہے؟ یعنی اس وقت آپ سارے خیر سے قاعدین ہیں میرے سمیت، یہ کون سا بیٹھنا ہے؟ جب اسلام کو آپ کی میری ضرورت ہو تو ہم بیٹھے رہیں. دعا کیجئے اللہ ہمیں کبھی قائدین میں نہ کرے. یاد رکھیے قائدین از ایکول ٹو منافقین. یہ دل کا نفاق ہی نہیں اٹھنے دیتا. اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے تقاضے اتنے بڑے لگتے ہیں کہ اس کے لیے سارا دن گھومنے کو تیار. گاڑیاں نکلتی، پریشانیاں، کہیں چیک اپ، کہیں اپائنٹمنٹس، کہیں کچھ. ہاتھ میں ایک ناخن میں بھی کچھ گڑبڑ دکھ جائے تو اس کے لیے بھاگ جائے انسان اور اللہ کے راستے کی دوڑ دھوپ کو کہ اٹس اوکے، آئی ایم ناٹ فری، ابھی مائنڈ ہی نہیں بنا، ابھی میں بہت بزی ہوں، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو میرا گھر نیا بنا ہے، ابھی تو میری نئی نئی شادی ہوئی ہے. یاد رکھیے قائد پہلے بندہ بنتا ہے پھر منافق بن جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسا نہ کرے. دیکھیے میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا، جیسے یہ اب صورتیں بھی تو ساری سیرہ سی متعلق ہیں، میں نے کسی موقع پہ آپ کو بے عمل ہو کے بیٹھے نہیں دیکھا. آپ قائد نہیں تھے، قائد تھے دوسرے. آپ کو سمجھ ہے نا یعین ہے، وہ حمزہ اور یا ہوتی قائد تھے، قیادت کی، لیکن کبھی بیٹھے نہیں، نہ بیٹھنے دیا. اچھا لیڈر ہی وہ ہوتا ہے، نہ بیٹھے نہ بیٹھنے دے. آج ہم خود بیٹھے ہیں، وہ کہنا چاہیے گٹے گوڈوں میں پڑ گئے ہم امت کے. بیٹھی بھی نسل ہے اس وقت ہماری. اور یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ فصب انت و ربک فقاتلا، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے اور دونوں جا کے لڑو. انہا ہونا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی بڑے کام ہے، ابھی فیشیل کرانا ہے، ابھی ہم نے مہندی لگوانی ہے، ابھی ہم نے پھول بوٹے لینے ہیں، ابھی ہال کی ڈیکوریشن ہونی ہے، ہم بہت مصروف ہیں، آپ جائیے. ہاں جب فتح ہوگی تو بتا دینا، ہم جھنڈا اٹھا کر آ جائیں گے. آج سوئی ہوئی امت ہے، ریئلی سوئی ہوئی امت ہے. ویک اپ کال کی ضرورت ہے. شاید ہر سال رمضان اسی لیے آتا ہے کہ سوئے ہوئے ایمان کو ہم جگا سکیں. آپ ہی اپنی اور ساتھیوں کے لیے کوشش کریں. اور میں کہتی ہوں ہاں ہم کہتے ہیں، تو کہتے ہیں تو نہیں مانتے تو پھر آپ کا آگے کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ یا تو ہم سر پھاڑ منہ دھاڑ بات کرتے ہیں. کبھی ایک دفعہ اگلے کے شور کو بیدار کرے. سوچو تمہارا گناہ کون سا تمہارے آگے آ گیا، تم کر کیا رہے ہو، کس چیز نے تم سے روک لیا. ابن مسعود غالباً ان کا ہی کال ہے، ایک دفعہ ان کی تہجد رک گئی تو کہتے ہیں کہ میں وہ گناہ ڈھونڈ رہا ہوں اپنا جس نے مجھے آج کی تہجد سے محروم کر دیا. اللہ اکبر. اللہ ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ لائے کہ ہم نیکی کے رستوں سے نکل جائیں اور نکال دیے جائیں. फिर इसके बाद आप देखिए कि जब जिहाद फर्ज ऐन ना हो बल्कि फर्ज किफाया हो तो घर पर बैठने वाले कायदीन और मुजाहिदीन के लिए दुआ करने वालों का दर्जा उन मुजाहिदीन से कमतर होगा जो मैदान जंग में सफ आरा होंगे। आयत 59-56। अब देख रहे इस जुमले को आप समझिए, वक्त और हालात की बात होती है। याद रखिए जब अल्लाह के रास्ते में आपकी जरूरत हो उस वक्त घर बैठ जाएंगे जुर्म है, यही है फर्ज आइन होना। बाकी कुछ हालात ऐसे होते इट्स ओके आ जाएं तो इट्स ओके, नहीं आते तो इट्स ओके, ये फर्ज किफाया है। आपकी जगह कोई और खड़ा हो देगा, आपकी ड्यूटी कोई और ले लेगा। तो अपने लिए अभी से नियत करें जहां मुझे खड़ा किया जाए मैंने उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। मैं खुद सोचती हूँ कि मुझे इस टाइम पे जिसमें मेरी क्लास है मुझे तो कभी किसी ने दर्स की दावत नहीं दी। मुझे तो इस वक्त कोई नहीं बुलाता कि आओ खाना खाने चलते हैं, मुझे तो कोई नहीं अपॉइंटमेंट पे बुलाता। अल्लाह ना करे ये मेरी आजमाइश आ जाए, वजह क्या है कि उनको पता कि इन्होंने मानना ही नहीं है, जाया हो जाएगी अपॉइंटमेंट ली हुई। तो फिर आपको मुझे क्यों कोई उठाए छोटी छोटी बात पे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि दारुल कुफर के मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वह दारुस्सलाम के क्याम के बाद लाजिमन हिजरत कर ले। अब इस पे सोचिए, किसी पे हमारा कोई कमेंट नहीं। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बन गया, क्या जरूरी था बरेसगीर पाको हिंद वालों के लिए? आओ अपने मुल्क में देखिए। अब मैं इस जुमले की अगर मैं डिफरेंट लॉजिक्स रखूँ ना, गौर से सुनिएगा। एक होता कि आप कुफर के साथ मिलकर रह रहे थे, मजबूरी थी, अब अल्लाह ने पाकिस्तान दे दिया, जाए वहां रहे, और आप नहीं जाते पाकिस्तान में, तो आप दूसरे लफ्जों में क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो गुजर गया वक्त आज से 70 साल पहले। आज लीजिए दारुल कुफर क्या है, कुफर का सिस्टम, और उसके मुकाबले में दारुल सलाम। आपके बच्चों के पास चॉइस ही कोई नहीं थी, वो गैर मुस्लिम स्कूलों में जाते थे, अल्लाह ने मुस्लिम स्कूल बना दिया। क्या फर्ज है माँ बाप का कि अपने बच्चों को उस मुस्लिम स्कूल में भेजें? और जो फिगर्स एंड फैक्ट सामने आते हैं, जो भी कभी स्कूल फी माजी में आपके इस मुल्क में या अमेरिका में तो बेशुमार है खुलते हैं, आपको पता है कि जो उनके मैनेजमेंट वाले उनको सबसे बड़ा किला क्या होता है? अपने लोग ही नहीं भेजते बच्चों को। कई स्कूल बन के खुल के फिर बंद हो गए, लोगों ने भेजा ही नहीं। क्यों? नहीं, आप लोगों की इंग्लिश नहीं अच्छी, नहीं आपकी वो मैथ वाली टीचर ज्यादा अच्छी नहीं, तो फिर हमारे बच्चे के स्कोर कम होंगे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये मुराद है इधर? नहीं थी ऑप्शन, और बात थी, अब आ गई है, अब किसको लेते हैं? आप कहते हैं बच्चों की बात तो इधर है ही कोई नहीं, अभी चलो तो बड़ों की है कि नहीं है? अल्लाह ने आपको मुझे इस कुरान के लिए बिठाया, अब मैं यहां से उठकर किसी दूसरे दीन को सीखने जा सकती हूँ? मैं दूसरी दुनिया को सीखने जा सकती हूँ? याद रखिए नेमत लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, नेमत को कायम रखना बड़ी बात है। अब इस जुमले को फिर सुने, दारुल कुफर के मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो दारुस सलाम के क्याम के बाद लाजिमन हिजरत कर लें वरना दोजखी होंगे। हिजरत के नतीजे में दुनियावी फवायद और अम्वाले गनीमत भी हासिल होंगे। लोग क्या सोच के नहीं आते दीन की चीज पे कि नहीं स्टेटस कम होगा, मार्क्स कम आएंगे, हालांकि उलट है, अल्लाह उनको दुनिया की इज्जत भी दे देता है, फायदे दुनिया के भी मिलते हैं। जिनके बच्चे ऐसी जगहों पे चले गए, जिनकी बच्चियां ऐसी जगहों पे चली गई उनकी इज्जत नहीं महफूज हो गई। लेकिन शैतान का बुरा हो कि 20-20 साल तक दुनिया की तालीम हासिल कराता है और दीन की तालीम 2 साल भी हो ना तो जान पे बन जाती है। मुश्किलात, वो कहते हैं कि बंदा वो लोटपोट होने लगता है कि नहीं ये टू लॉन्ग नहीं हो गया? ये हमारी अपनी प्रायोरिटीज हैं, तो फिर अल्लाह भी तो हमें उतना ही देगा ना। और सारा पढ़ पढ़ा के एक इंसान कहता है पढ़ लिया अंदर रख लिया अब इसको छोड़ो, फिर उसी लाइन में लग जाऊं जिसमें सारी दुनिया भाग रही है, तो ये ना शुक्रिया, कामयाबी नहीं होगी। याद रखिए आज उम्मत मुस्लिमा का कामयाबी का नुक्ता नजर ही बदला हुआ है। अल्लाह हमारे ग्लासेस का नंबर ठीक कर दे। सलातुल खौफ के अहकाम बताए गए, जंग की हालत में आधी फौज नमाज पढ़ेगी और आधी फौज निगरानी करेगी, फिर वो अपनी अपनी ड्यूटियां बदलेंगे लेकिन नमाज वक्त की पाबंदी के साथ अदा की जाएगी। क्यों? इसलिए कि न सलात का न तलल मोमिनी न किताब मौकूता, आयत 103 है। बेशक नमाज ईमान वालों पर वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ी गई। सलातुल खौफ, सामने तलवारें हैं, तीर है, और आप सर आगे झुका रहे हैं अल्लाह के, तो फिर आम हालात में क्या? और सलातुल खौफ में भी जमात की नमाज है, तो वो मर्द ब्रदर हजरात जो आम दिनों में जमात से नहीं पढ़ते, उनका क्या बनेगा? हम वाकई उल्टे कपड़े भी नहीं पहने फिर रहे, उल्टे जूतों में पहुंच दिए हैं, इसीलिए परेशान है। इसीलिए दीन की तरफ आने वाले भी परेशान हैं और उनके घर वाले भी परेशान हैं कि ये कहाँ चल पड़ी। एक सिस्टर मुझे बता रही थी कि उनकी सास कहती है कि सानू तो नहीं किसी ने बख्शना, सारियां ही नूहां जेड़ियां वहाबी हो गया, साड़ा खत्म किन्ने पढ़ना। तो मैंने कहा अपनी सास को पैगाम दे कि फिर अपने हाथ से इस खत्म को खत्म कर जाए, इस अकाउंट में जाना तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं जाना तो बंद करा दें, अल्लाह तौबा तिल्ला माफ कर देगा, कबूल कर दे। यानी अब खौफ ये है कि घर वाले कुरान पढ़ने लग गए तो हमारे खत्म ही नहीं होने। आप में से तो नहीं किसी को ये मैसेज मिला हुआ? अल्लाह ताला हमारी इसलाह कर दे, दुआ कर इसलाह कर दे। तो आप देखिए ये चौथा हिस्सा कितना क्रिटिकल था, और ये हमेशा क्रिटिकल होगा जहाँ निफाक का जिक्र होगा। और जब ये आयतें पढ़ते हैं, चौथे पारे की आखिरी आयतें, मुज़ब्ज़बी नबई नज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, दो भेड़ों के दरमियान में एक बकरी मुनाफ़क़त की तस्वीर बनी होती है। आज बिलीव मी के हमें समझ ही नहीं आता कि ईमान आने के बाद क्यों लुढ़कता है। यानी नया नया ईमान और निफाक में फ़र्क ही नहीं महसूस होता। तो हमेशा अपने आप को फोकस्ड करे बंदा, जिंदगी का सुकून और खुशी यक रुखा होने में। शादी हो गई खत्म, बस अब जो कुछ था पहले जेहन में निकाल दो, इधर ही रहना है, वही बच्ची बसेगी। और अगर पीछे की मोहब्बतें कायम रहें तो वो घर नहीं बसते। इसी तरह दूसरी तरफ भी है, जो नसीब में था वो जोड़ा ले लिया, घर आ गए खुश हो जाओ, और जो छोड़ा है अगर उसको याद करते रहोगे तो इसको पहन के भी नहीं खुशी होनी। हमारा हाल यह कि हम दीन पे आ भी जाते हैं तो दुनिया नहीं छूटती। मच्छर के परों के लिए हम ये हीरे मोतियों जैसी जड़ी हुई आयतें छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं खुश हैं, मुतमईन है। मैं अक्सर ऐसे लोगों से बैठूं केले में तो पूछती हूँ, सुनाए दिल की क्या हालत है? कहते हैं खुश है, ठीक लग रही, सो के, क्योंकि हर महीने 25-30 हज़ार रुपये आता था पर्स में, तो वो है जमा, नहीं आने से पहले चला जाता है, लेकिन हम खुश हैं। याद रखें गफलत का भी एक मज़ा ही होता है, अल्लाह हमें गफलतों से निकाल दे।